लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम सब लोग सृष्टि की रक्षा के प्रति समर्पित युवाओं में आनंदित होते हुए सरल और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय जीवन शैली हेतु सही विकल्पों को चुनने का साहस प्राप्त करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स एवं छोटे नागपुर में कार्तिक कलीसिया के विकास पर चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रोताओ, पिछले कार्यक्रम में हमने नए मिशन सुपीरियर की नियुक्ति एवं फादर लेबन्स को पदभार से मुक्त किए जाने के बारे सुना था। आज हम सुनेंगे कि फादर लेबन्स को मिशन की स्थिति पर किस तरह मानसिक वेदना से होकर गुजरना पड़ा। फादर लेबन्स के लिए रांची में शेष 6 महीने अत्यंत दुखद और उदासीपूर्ण थे। उन्होंने अपने सुपीरियर का भरोसा खो दिया था। वे धीरे धीरे अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे और अपने कार्य से उन्हें कोई सांत्वना नहीं मिल रही थी। वे अपने कार्य को असहाय होकर बिखरते देख रहे थे और उस भयंकर सवाल का जवाब नहीं जानते थे कि इसका अंत कहां और कब होने वाला था। फादर लेबन्स पर कभी किसी ने अभिमानी और आत्मसंतोषी होने का दोष नहीं लगाया था, बल्कि सभी ने उनकी दीनता की सराहना की थी। उन दिनों जब वे सफलतापूर्वक काम कर रहे थे, उन्होंने सारी महिमा ईश्वर को अर्पित की थी। अंतिम दिनों के अपमान एवं चिंता को भी उन्होंने ईश्वर के वरदान के रूप में स्वीकार किया था तथा अपनी आत्मा को हर प्रकार के स्वार्थ से पूरी तरह शुद्ध किया था। मिशन के केंद्र रांची में मिशन में जो कुछ हुआ था और जो हो रहा था उसका सारा रिपोर्ट मौजूद था और लगता था कि पहले के मिशन संयोजक अधिक उत्साही थे। सरकारी अधिकारियों की कृपा, मिशनरियों एवं अधिकारियों के बीच संपर्क नहीं होने के कारण पहले ही कम हो चुके थे। इस तरह मिशन का सिद्धांत बदल चुका था। उनके बीच कुछ हद तक संदेह उत्पन्न हो गया था। नए कमिश्नर मिस्टर गोडोन ने भी अपना साथ नहीं दिया, जबकि शुरू में फादर लेबन्स एवं जेसुइट मिशनरियों की सलाह पर कई लोगों ने मुकदमा जीता था। उसकी तुलना में अब बहुत कम लोगों को जीत मिल रही थी। कई अधिकारियों को मार्च 1890 के निर्णय के न्याय पर पक्का विश्वास नहीं था और वे न केवल कार्तिक मिशन पर संदेह कर रहे थे बल्कि उसका विरोध भी कर रहे थे। फादर कुस के मामले ने मिशन को अधिक कलंकित किया था। न्यायाधीश के मनोभाव में भी परिवर्तन हुआ और वे मिशनरियों से मदद लेने में अनिच्छुक हो गए। फादर लेबन्स ने अधिकारियों के व्यवहार में इस परिवर्तन को गहराई से महसूस किया। अधिकारियों का सद्भाव, जो उनकी सफलता का बहुत बड़ा कारण था, अब बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा था। नए मिशनरियों की उपस्थिति, उनकी यात्रा और निकटता ने काम को नया बल प्रदान किया था। कुछ सालों पहले 20 मिशनरियों को भेजने की फादर लेबन्स की मांग को उदारतापूर्वक पूरा किया गया था, किंतु मिशनरियों की मौत से मिशन फिर लकवाग्रस्त हो गया और बर्वे लंबे समय तक बिना पुरोहित के चलता रहा। आर्थिक मामला फादर लेबन्स के लिए अधिक निराशा का कारण बना। मिशन का पूरा काम सुसमाचार प्रचार, शिक्षा और लोगों की मदद करना सिर्फ यदा कदा मिलने वाले दान राशि पर निर्भर था। पैसा सही समय पर नहीं मिलता था। जब पैसा सही समय पर नहीं आता था तो चिंता बढ़ जाती थी और मिशन एवं कर्मचारियों के बीच संबंध में तनाव उत्पन्न हो जाते थे। अंत में जब जमींदार अपने अधीन के ख्रिस्तों को सताने के लिए एकजुट हुए, तब मिशन आर्थिक रूप से पंगु हो चुका था। जबकि मिशन में भर्ती होने के लिए अत्याचार के शिकार ख्रिस्तों को उसी समय मदद की अधिक आवश्यकता थी। बाद में ऐसा भी समय आया जब मिशनरी मदद करने से इनकार करने लगे। इस तरह कमजोर ख्रिस्त छोड़ दिए गए एवं वे फिर जमींदारों के चंगुल में आ गए। इस तरह फादर लेबन्स ने एक बड़े दल बदल की शुरुआत को देखा। फादर लेबन्स ने इन सब को देखकर दिल में गहरे दुख एवं निराशा का अनुभव किया। जब मिशन को आगे ले जाने के सभी साधन उनके हाथों से धीरे धीरे जाने लगे, तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेहनत भी यूं ही चले गए। बीमारी की हालत में वे शक्तिहीन हो चुके थे और मिशन की स्थिति के प्रति डर ने उन्हें अधिक दुर्बल बना दिया। बढ़ते अंधेरे के बीच 1 जून 1892 को नए मिशन सुपीरियर फादर बोर्डसन का रांची में निधन हो गया। वे 36 साल के थे और सिर्फ 4 माह तक अपने नए कार्यभार को संभाले थे। अपनी मृत्यु के कुछ ही महीनों पहले फादर बोर्डसन ने अपने माता पिता को लिखा था, बहुत अधिक काम एवं काम करने वालों की कमी के कारण हर एक अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहा है। कुछ लोग इसे कर पा रहे हैं और जब तक बुखार या किसी प्रकार की बीमारी नहीं लग जाती, कोई आराम करने की नहीं सोचता। खुद को मौत के घाट उतारने के प्रलोभन का विरोध करना हमारे लिए बहुत कठिन है। रांची से कलकत्ता जाने से पहले, जहां उन्हें मिशन सुपीरियर का कार्यभार ग्रहण करना था, फादर बोर्डसन ने मनरेसा के रेक्टर को मजाक करते हुए बतलाया था कि वे कलकत्ता जा रहे हैं, जहां से रांची लौटेंगे और उसके बाद डुरांडा जाएंगे। मुश्किल से 4 माह बीता और फादर बोर्डसन अपने निराशाजनक कार्यक्रमों के भार से इतने दब गए कि अंत में उन्हें डुरांडा का कब्रस्थान पहुंचाया गया। फादर बोर्डसन की मौत ने छोटानागपुर मिशन को बिना पतवार के नाव की तरह छोड़ दिया। इस तरह बहुत अधिक पीड़ा के साथ फादर लेबन्स ने अपने सह मिशनरी के संघर्ष को देखा। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स एवं छोटानागपुर मिशन की शुरुआत पर एक चर्चा सुन रहे थे। इस पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति।
लहू से भरा क्रूस पर चढ़ा, सबके गुनाहों की खातिर देखो, लहू से भरा क्रूस पर चढ़ा। जो कोढ़े से है कर यीशु ने कहा है, जो कोढ़े से है कर यीशु ने कहा है, इन्हें माफ कर दो नादान ये है, इन्हें माफ कर दो नादान ये हैं। यीशु का प्यार देखो कैसा अनोखा है हमारे लिए, हमारे लिए लहू से भरा क्रूस पर चढ़ा।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक हिम्मत, लेखिका है भवानी कौल। श्रोताओं, हमारी संस्कृति का एक ही संदेश है, कि सच्चे अर्थों में मनुष्य बने तथा जीवन में सभी क्षेत्रों को मानवता से ओतप्रोत करें और संसार से पशुता के अंधकार को हटाकर उस दिव्य आचार विचार की ज्योति प्रकाशित करें, जिसके प्रकाश में मानव प्राणी अपने आप को सच्चा इंसान अनुभव कर सके, दूसरों की खुशी, पीड़ा, उल्लास, रोदन को अपने अंदर महसूस कर सके, मुसीबत के समय किसी को सहायता प्रदान करके उसके दुख का निवारण करने से खुद को जो सुख की अनुभूति होती है उस खुशी का ठिकाना नहीं होता, और इस खुशी का अनुभव कर लेने के बाद उसे दूसरों की सेवा या मदद करने हेतु दूसरों के कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। आज के नाटक में जरूरतमंद पड़ोसिन की मदद करने में दो महिलाओं को आंधी तूफान, बारिश और काली रात भी न रोक पाई, उनके हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तो आइए सुनते हैं भवानी कौल की लिखी नाटिका हिम्मत।
अरे शीला, कैसी है तू?
हाँ दीदी, नौवा लग गया है।
अरे हाँ, नौवा महीना लग गया है ना तुझे। अच्छा बता, तेरा आदमी उस औरत के पास ही है कि वापस आया कि नहीं?
अरे नहीं दीदी, यही तो रोना है, उसे मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। हाँ
अरे इन आदमियों का क्या कहूँ, ऊपर वाला भी ना जाने कहाँ चला गया है। अरे इनके करतूत तो देखे। देख तू जरा भी चिंता मत करना, कोई तकलीफ हो तो अपने बेटे रघु के हाथों खबर भिजवा देना, मैं सब देख लूंगी, बिल्कुल चिंता मत करना।
दीदी आपका ही तो सहारा है, बाकी सब तो मेरे लिए मर चुके हैं। अच्छा चलती हूँ दीदी, क्या ससुराल वाले और क्या मायके वाले।
हाँ रे, शादी के पहले मायके वाले अपने होते हैं, फिर शादी के बाद तो मायके वाले भी ससुराल वाले जैसे ही हो जाते हैं।
ठीक कहती हो दीदी, वरना ये दिन क्यों देखना पड़ता। अच्छा चलो।
हाँ ठीक है ठीक है, रोना मत। हाँ हाँ प्रभु, उस शीला की रक्षा करना, उसे हिम्मत देना, उसके लिए मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करना प्रभु। हे मेरे ईश्वर। कौन?
मैं हूँ रघु।
अरे अरे रघु तुम?
हाँ, वो मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है।
अच्छा,
उन्होंने आपको बुलाने के लिए मुझे भेजा है, रो रही बहुत वो।
अच्छा अच्छा, तू चल मैं आती हूँ।
हाँ।
चल चल जल्दी जा।
हाँ।
हे प्रभु उसकी रक्षा करना, तेरे हाथों में है सब कुछ, ध्यान रखना प्रभु। अरे शीला तू ठीक तो है? तू ठीक तो है?
दीदी दर्द हो रहा है बहुत।
अरे रुको, तुम थोड़ा धीरज रखो, मैं हॉस्पिटल जाने का इंतजाम करती हूँ, धीरज रख थोड़ा सा, मैं अभी गई और अभी आई। अरे भैया, अरे वो रिक्शे वाले भैया, अरे वो भैया, अरे उठो भैया, हमको हॉस्पिटल जाना है। भैया मेरी पड़ोसन की डिलीवरी होने वाली है। अरे भैया उठो।
अरे कौन है भाई? देखो अभी हम कहीं नहीं जाएंगे बहन जी, सोने दो हमको, इतनी रात को हॉस्पिटल। अरे बाबरे, नहीं नहीं नहीं, सोने दो।
अरे उठ जाओ भैया,
आगे देख लो मैम साहब और
किसी। अरे उठ जाओ भैया, किसी का दर्द समझा करो भैया, इतनी रात को यहाँ रिक्शा लेकर क्यों हो, घर जाकर सो ना आराम से।
अच्छा हमको सिखा रहे हो, हमको सिखा रहे हैं? ये तुम्हारी मर्जी चलेगी क्या? अरे चले जाओ यहाँ से, जाओ।
ये रिक्शा वाले भैया, थोड़ा हॉस्पिटल तक ही तो जाना है, ले चलो ना भैया। अरे देखो देखो मेरी पड़ोसन को डिलीवरी होने वाली, भैया बहुत तड़प रही है। अरे ओ भैया, अरे थोड़ा दया करो भैया। अरे क्या करूँ, अरे भैया भैया रिक्शा वाला आप जरा सुन लो भैया हमारी।
भैया कहाँ जाना है बोलो?
भैया सरकारी अस्पताल जाना है हमको।
इतना दूर, वो भी इतनी रात को? नहीं मैडम जी, हम नहीं जा पाएंगे।
अरे तुम लोग इतने जल्लाद क्यों हो भैया, तुम लोग इंसान हो कि नहीं? अब
मैडम जी बारिश देख रहे हो हैं? उसमें ये सावन की काली अंधेरी रात, सूना रास्ता, अकेली महिला, देखो देखो हम नहीं जा पाएंगे, कुछ हुआ गया तो हमारे ऊपर आ जाएगा।
कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। अरे ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर कुछ नहीं होने देगा।
मैडम जी घर के सारे मर्द मर गए हैं क्या, जो अकेली महिला बारिश में है?
हाँ हाँ मर गए भैया, तभी तो तुमसे हम गुहार कर रही हैं, और ऐसे समय में एक औरत ही एक औरत के काम आती है, बेवकूफ कहीं का।
ये बताओ कितने पैसे दोगे, 1000 रुपए लगेंगे।
अरे सोच समझ कर बोलो भैया, बुरे वक्त का फायदा मत उठाओ। अरे मेरे पास 500 है, देखो ये 500 ले लो भैया।
मैडम
बाकी के पैसे हम बाद में दे देंगे आपको।
हम नहीं चल पाएंगे मैडम, बहुत रात है।
रख लो भैया 500 रुपया, 500 हम तुमको बाद में दे देंगे भैया।
मैडम जी तू हमारा रिश्तेदार नहीं है भाई, समझे ना, इतनी दूर जाने से हमको क्या मिलेगा।
अरे भैया कभी कभी इंसान को नुकसान भी उठाना पड़ता है इंसानियत के नाते। अरे वक्त वक्त की बात है भैया, मैं जा रही हूँ, मगर याद रखना ईश्वर तुम लोगों का कभी भला नहीं करेगा, तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। जाती हूँ मैं, तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अरे शीला, शीला तू ठीक तो है ना।
दीदी क्या हुआ दीदी।
अरे धैर्य रखना बहन, धैर्य रख, मैंने इंतजाम कर लिया है, हम लोग हॉस्पिटल चल रहे हैं। अरे शीला वो अपना पड़ोस वाला राजू का रिक्शा, वो पड़ोस वाला राजू का रिक्शा बाहर ही खड़ा रहता है ना।
हाँ दीदी राजू का।
बस बस तू फिकर मत कर, मैं अभी अभी गई, अभी आई। हाँ अरे अंजलि, अंजलि, अंजलि।
हाँ हाँ क्या हुआ दीदी इतनी रात।
अरे क्या बताऊँ तुमको, शीला की तबीयत बहुत खराब है।
हाँ,
उसे बच्चा होने वाला है ना, जल्दी चल उसे अस्पताल लेके जाना है हमको। चल
अच्छा,
अरे कोई रिक्शा वाला भी तैयार नहीं हो रहा है,
तो चलो दीदी
चल चल चल। अंजलि सुन, ये रिक्शा खड़ा है ना, उसको मैं चलाऊंगी और तू पीछे से धक्का देना।
हाँ ठीक है दीदी,
है ना, चल चल। शीला को रिक्शा में बैठाते हैं, चल
चल चल चलो दीदी।
अरे शीला आराम से, आराम से बैठ जा रिक्शे में। अरे अरे मैं चलती हूँ। हाँ आराम से, देख मैं रिक्शा चला रही हूँ। अंजलि
दीदी कब तक, कब तक पहुँचेंगे दीदी।
पहुँच जाएंगे। अंजलि तू पीछे से ठेक, धक्का देना, थोड़ी धीरज रख, धीरज रख। ठीक है ना शीला, तू लेट जा दीदी, चलो जल्दी दीदी।
दीदी कब तक पहुँचेंगे।
अरे रो मत, बस बस
जल्दी करो दीदी।
हाँ, पहुँचने में ही है, थोड़ा सहन कर ले, थोड़ा सा और, हम बस थोड़ी दूर रह गया दीदी। अरे नहीं नहीं पहुँच ही गए। अरे वो रहा अस्पताल, तू रिक्शा अपनी तरफ खींचना अंजलि, ठीक है।
ठीक है दीदी, धीरे
धीरे आराम से। अरे वो भैया डिलीवरी वाली महिला है, जल्दी जल्दी अपना स्ट्रेचर लाओ, जल्दी आओ। अरे लेट जा, लेट जा आराम से, बस लेट लेट। हे प्रभु उसकी रक्षा करना, तेरे हाथों में है सब कुछ, ध्यान रखना प्रभु।
आप मिल सकते हैं।
आहा कितनी सुंदर है अंजलि, देख तो सही।
हाँ दीदी देखा, शीला तूने देखा, अरे बड़ी प्यारी है रे।
दीदी अगर आप दोनों मदद नहीं करती तो मैं तो मर ही गई होती। आपने मेरी और मेरी बच्ची की जान बचा ली दीदी।
अरे बस रे, सब ईश्वर की कृपा है, जो करता है वही करता है।
यार राजू ये अखबार में क्या छपा है, एक ऐसी महिला जिसने मर्दों की तरह रिक्शा खींचकर एक गर्भवती महिला की जान बचाई, उसे इनाम दिया जाएगा सरकार की ओर से। यार कितनी गलत बात है,
क्या बात कर,
हम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया और महिला ही उसे खींच के ले गई। शर्म आनी चाहिए, आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे,
बिल्कुल नहीं करेंगे,
सबकी मदद करेंगे,
बिल्कुल करेंगे,
है ना।
हिम्मत, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इस नाटिका के कलाकार थे संतोष जोशी, समता बोरेकर, अमित सिंह और भवानी कोल। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।